ایران رادیو پادکست. دوستو روزویلٹ اسٹریٹ پوڈکاسٹ کا یہ چھٹا ایپیسوڈ ہے ایران ریڈیو سے، میں ہوں احمد عباس، آپ سبھی کو میرا سلام۔ اگر آپ دوسرے دلچسپ وشیوں پر بھی پوڈکاسٹ سننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ iranradio.ir/hi کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ ایران میں حکومت کے شاہی شاسن سے لوک تنتر میں بدلنے کے دنوں میں تہران ایک ماتر اشانت راجدھانی نہیں تھی، واشنگٹن بھی اشانتی کا انوبھو کر رہا تھا۔ امریکی نیتا ایران سے جڑے اہم مدوں پر سہمتی نہیں بنا پا رہے تھے، جیسے کہ کرانتیکاری سرکار سے نپٹنے کا طریقہ، محمد رضا پہلوی کو شرن دینا، اورجا سنکٹ کا پربندھن، مدھیہ پورو میں امریکی رڑنیتک ہتوں کی رکشا، اور یہاں تک کہ ایران پر سینے حملے کی سمبھاونا۔ ان مت بھیدوں نے امریکی نیتاؤں کے بیچ ایک گہری کھائی پیدا کر دی تھی۔ یہ نیتا دو مکھ خیموں میں بٹ گئے تھے، ہاکس اور ڈوبز۔ راجنیتی وگیان میں ہاکس ان راج نیتاؤں کو کہا جاتا ہے جو ودیش نیتی کے پرتی کٹھور نرنائک اور کٹھور رخ اپناتے ہیں، اکثر سینے سادھنوں اور راجنیتک دباؤ کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کے الٹ ڈوبز نرم رویے اور کوٹ نیتی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ راشٹری ہتوں کو سادھنے کے لیے بات چیت اور سہیوگ سروتم طریقہ ہے۔ ۱۹۷۹ کی شروعات میں واشنگٹن میں ہاکس ایرانی کرانتی کا کڑا جواب دینے اور محمد رضا پہلوی کا سمرتھن کرنے کی مانگ کر رہے تھے، جبکہ ڈوبز ایران کی انتریم سرکار کے ساتھ راجنیک سمبندھ بنائے رکھنے اور اکساوے والی کاروائیوں سے بچنے پر زور دے رہے تھے۔ وائٹ ہاؤس میں ہاکس کا نیتریتو راشٹرپتی جیمی کارٹر کے راشٹریہ سرکشا صلاحکار زبگنیو برزنسکی کر رہے تھے۔ اس گروپ میں ہنری الفریڈ کسنجر، ڈیوڈ راکفیلر، ہیرولڈ براؤن اور جیمز آر شلیزنگر جیسے نیتا شامل تھے۔ سرکاری ادھیکاریوں اور کچھ سینیٹروں کے علاوہ وال اسٹریٹ بینکر، زائونی لابی اور کاؤنسل آن فارن ریلیشنز جیسی سنستھائیں بھی کٹھور نیتیوں کا سمرتھن کر رہی تھیں۔ برزنسکی کا ماننا تھا کہ امریکہ کے لمبے سمے سے سہیوگی رہے محمد رضا پہلوی کا سمرتھن نہ کرنے سے مدھیہ پورو میں ان کے سہیوگیوں کے بیچ امریکہ کی وشوسنیتا کو نقصان پہنچے گا۔ مصر میں انور سادات، موراکو میں کنگ حسن اور سعودی عرب میں کنگ خالد جیسے مہتوپورن سہیوگیوں کی نظر شاہ کے بھاگیہ پر تھی۔ برزنسکی نے کارٹر کو ایک گیاپن میں لکھا، ہمارے دوستوں کے پرتی ہماری پرتیبدھتا داؤں پر ہے، شاہ کے بھاگیہ کے پرتی اداسینتا ہمارے سہیوگیوں کی وفاداری پر ایک گھاتک پرہار ہوگی۔ امریکی پورو ودیش منتری ہنری کسنجر برزنسکی کے ساتھ اپنی راجنیتک پرتیدوندتا کے باوجود اس بات سے سہمت تھے۔ کسنجر نے کارٹر سے کہا، پچھلے چار دشکوں میں ہر ایک امریکی راشٹرپتی کو شاہ کی سیواؤں سے لابھ ہوا ہے، مجھے اس بات کی گہری چنتا ہے کہ اگر ہم ان کے سامنے کھڑے ہوئے تو اس کھیتر میں امریکہ کے دوسرے متر سمان روپ سے خطرناک پرستھتیوں میں کیا کریں گے۔ کسنجر کا ماننا تھا کہ شاہ کو محسوس ہوگا اس کے ساتھ وشواسگھات ہوا ہے، ہمارے پاس دو سے زیادہ وکلپ نہیں ہیں، ایک سینیہ تختہ پلٹ یا ایک اور لیبیا یا الجیریا کا گٹھن۔ امریکی اپراشٹرپتی والٹر مونڈیل ان لوگوں میں سے تھے جو محمد رضا پہلوی کو امریکی سرزمین پر سویکار کرنے کے پکش میں تھے۔ مونڈیل بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے اگست 1979 میں کارٹر کو ایک نوٹ میں لکھا، ایرانی خاص کر خمینی ایسے ستھان پر ہیں جہاں سے وہ امریکی سرکار کا بھاگیہ طے کر رہے ہیں۔ راک فیلر جیسے بڑے بینکروں نے بھی محمد رضا پہلوی کے لیے اور زیادہ سمرتھن کی مانگ کی۔ अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के मुताबिक रॉकफेलर बंधुओं द्वारा शाह को शरण देने पर जोर देने का कारण वो भारी मात्रा में धन था जो उसने ईरान से निकालकर चेस मैनहट्टन बैंक में जमा कर दिया था। पाकिस्तान टाइम्स ने दावा किया था कि मोहम्मद रजा शाह 17 अरब डॉलर से ज़्यादा की विदेशी मुद्रा, कीमती हीरे और जवाहरात देश से बाहर ले गए थे, हालांकि अनुमान सबसे कम था। मॉस्को रेडियो ने ईरान से लूटी गई संपत्ति का मूल्य 23 अरब डॉलर आंका था, जिसका अधिकांश हिस्सा रॉकफेलर बैंक में स्थानांतरित कर दिया गया था। डेविड रॉकफेलर ने 9 अप्रैल 1979 को कार्टर को एक नोट भेजा जिसमें शाह के भाग्य के प्रति उदासीनता पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने लिखा, पिछले कुछ महीनों में मैंने एशिया, अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व के 20 से ज़्यादा देशों की यात्राएँ की हैं। ये सभी देश खुद को अमेरिका के मित्र और सहयोगी मानते थे, लेकिन ईरान के शाह की हालत देखकर इन देशों के नेता अमेरिका पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। हेरोल्ड ब्राउन के नेतृत्व में अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी आक्रामक नीतियों का समर्थन किया। ब्राउन ने लिखा, 1979 में कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन में हम ईरानी सेना और उदारवादियों को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो खुमैनी के सत्ता में आने का विरोध करें। इन प्रयासों में मिडिल लाइन कोलिशन योजना का समर्थन भी शामिल था। इसका उद्देश्य क्रांतिकारी शासन की जगह अमेरिकी समर्थक उदारवादियों को सत्ता में लाना था। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री जेम्स श्लेसिंगर ने भी ईरानी क्रांति के कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट के मद्देनज़र निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। ब्रिजिंस्की और ब्राउन की तरह वो भी यहूदी थे और पहले CIA के निदेशक और वाइस डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके थे। श्लेसिंगर ने 25 फरवरी 1979 को NBC के साथ एक साक्षात्कार में कहा, कार्टर प्रशासन फारस की खाड़ी में अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए सैन्य बल के प्रयोग की संभावना पर विचार कर रहा है। श्लेसिंगर का मानना था कि 1917 की रूसी क्रांति के बाद से ईरानी क्रांति वैश्विक प्रभाव की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्रांति थी। डोव्स का नेतृत्व विदेश मंत्री साइरस वेनस कर रहे थे। इस समूह में वॉरेन क्रिस्टोफर, डेविड न्यूसम, हेनरी पार्केट, विलियम हीली सुलिवन और एंड्रयू यंग शामिल थे। डोव्स का मानना था कि शाह को शरण देने से ईरान में अमेरिकी हित खतरे में पड़ जाएंगे और तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमले जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास की रिपोर्टों और विदेश विभाग के विश्लेषणों के आधार पर साइरस वेंस ने तर्क दिया कि जब तक ईरानी सरकार पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाती तब तक शाह को स्वीकार करना खतरनाक होगा। उन्होंने कार्टर को एक ज्ञापन में लिखा, शाह के अमेरिका में प्रवेश से दूतावास पर फिर से कब्जा हो सकता है, जैसा कि हमने 14 फरवरी 1979 को देखा था। अमेरिकी राजदूत एंड्रयू यंग ने, के जो अभी अभी अपने मिशन से लौटे थे, मोहम्मद रजा पहलवी की तुलना यहूदियों द्वारा नफरत करने वाले व्यक्तियों से की। 10 नवंबर 1979 को द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, शाह का समर्थन करना एडोल्फ आइखमन की रक्षा करने जैसा है। इसराइल में कोई भी आइखमन के लिए हमारे समर्थन को बर्दाश्त नहीं करेगा। वॉरेन क्रिस्टोफर और डेविड न्यूसम वेंस से सहमत थे। उनका मानना था कि शाह को स्वीकार करने से न सिर्फ तेहरान के साथ संबंध जटिल होंगे बल्कि ईरान में रहने वाले अमेरिकियों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। हेनरी परकविट ने इस बात पर भी जोर दिया कि क्रांति के बाद ईरान की राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि शाह को आमंत्रित करने जैसी कोई भी बिना सोचे समझे कार्यवाही राजनयिक संकट का कारण बन सकती है। इन सभी संघर्षों के बाद जनवरी 1979 में जब ईरान में इस्लामी क्रांति अपने चरम पर थी, अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने मोहम्मद रजा पहलवी को आधिकारिक तौर पर अमेरिका आने का निमंत्रण दिया। अमेरिकी दूतावास के राजनीतिक सलाहकार ने शाह के फ्लाइट का विवरण इस प्रकार पेश किया, रॉयल शाहीन विमान न्यू इंग्लैंड के एक राज्य में ईंधन भरेगा और फिर सीधे कैलिफोर्निया के लिए उड़ान भरेगा। शाह और अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कोई बैठक तय नहीं हुई है। 16 जनवरी 1979 को मोहम्मद रजा पहलवी और फराह दीबा रॉयल शाहीन विमान से ईरान से रवाना हुए। ब्लू और सिल्वर कलर का शाहीन विमान 3 घंटे की उड़ान के बाद असवान हवाई अड्डे पर उतरा। अनवर सादात, उनकी पत्नी सिहान और पूरे मिस्र के मंत्रिमंडल ने आधिकारिक समारोहों के साथ शाह और उनकी पत्नी का स्वागत किया। शाही परिवार नील नदी के किनारे एक द्वीप पर एक आलीशान होटल में ठहरा। सादात के साथ एक साक्षात्कार में मोहम्मद रजा पहलवी ने तेहरान छोड़ने के अमेरिकी दबाव की शिकायत की। उन्होंने कहा, अमेरिकियों ने मुझे मजबूर कर दिया। विलियम सुलिवन हवाई अड्डे पर बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे और कह रहे थे कि देरी का एक एक मिनट मेरे या ईरान के हित में नहीं है। सादात अपने पुराने सहयोगी के साथ अमेरिकियों के व्यवहार से स्तब्ध थे। वॉशिंगटन में शाह का समर्थन करने के लिए इसी भावना का सहारा लिया गया था। शाह 6 दिन तक आसमान में ठहरे। सादात को सूडान की यात्रा पर जाना था। अमेरिका में ईरान के पूर्व राजदूत अर्दशीर जाहिदी ने मोरक्को के राजा हसन से संपर्क किया और स्थिति से अवगत कराया। राजा हसन ने तुरंत मोहम्मद रजा और फराह पहलवी को अपने देश आमंत्रित किया। 22 जनवरी 1979 को शाहीन विमान आसमान से मोरक्को के लिए रवाना हुआ, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि कार्टर के आधिकारिक निमंत्रण के बावजूद शाह ने अपनी अमेरिकी यात्रा क्यों स्थगित कर दी। अमेरिकी विदेश मंत्री साइरस वेंस ने इस बारे में लिखा, शाह का मानना था कि उन्हें ईरान के जितना हो सके करीब रहना चाहिए ताकि सेना की मजबूत स्थिति में वो जल्द देश लौट सकें। शाह के करीबी सलाहकारों का भी मानना था कि अमेरिका की यात्रा घर वापसी से निराशा का संदेश देगी और उनके सिंहासन पर वापसी के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। शाह मोरक्को में अमेरिकियों के सीधे संपर्क में थे। उनका ठिकाना मराकेच शहर में था और मोरक्को की राजधानी रबात में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड पार्कर और CIA एजेंट सहित अमेरिकी अधिकारी उनसे मिलने के लिए आते जाते रहते थे। फरवरी 1979 के अंत में रबात में पहलवी शासन के अंतिम राजदूत फरहाद सिपाहबुदी ने पार्कर से मुलाकात की और शाह की चिंताओं को व्यक्त किया। कार्टर प्रशासन उन्हें छोड़ देगा और अमेरिका में उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर देगा। पार्कर ने उन्हें आश्वासन दिया कि व्हाइट हाउस अभी भी शाह को स्वीकार करने का इरादा रखता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि शाह के प्रत्यर्पण की माफ़ी की मांग समस्याएं पैदा कर सकती है। वॉशिंगटन से भेजे गए 2 टेलीग्रामों ने इसकी पुष्टि की। पहले टेलीग्राम में के जिस पर 22 फरवरी 1979 की तारीख थी, इस बात पर जोर दिया गया था कि अमेरिका शाह को स्वीकार करने की पिछली गारंटियों से पीछे नहीं हटा है। ईरान के साथ हमारी कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है और ऐसा कोई जोखिम भी नहीं है। दूसरे टेलीग्राम ने शाह की मेज़बानी के लिए व्हाइट हाउस की तत्परता दोहराई, लेकिन सच्चाई ये थी कि 14 फरवरी 1979 को तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करने से मामला और जटिल हो गया। राजनीतिक मामलों के उप सचिव जॉन फॉर्ब्स ने 29 मार्च 1979 को वॉशिंगटन पोस्ट को बताया, दूतावास की घटना से पहले शाह बिना किसी शर्त के अमेरिका आ सकते थे, लेकिन अब उनकी और ईरान में रहने वाले अमेरिकियों की सुरक्षा और अमेरिका में 50,000 ईरानी छात्रों की उपस्थिति ने नई परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। शाह का मोरक्को में रहना राजा हसन के लिए एकदम सादा सी बात नहीं थी। कासाब्लांका में छात्र प्रदर्शनों, इमाम खुमैनी के समर्थन में दीवारों पर चित्रों और अमेरिकन स्कूल ऑफ ट्रेंजियर में विरोध प्रदर्शनों ने देश के राजनीतिक माहौल को तनावपूर्ण बना दिया था। तेहरान से प्राप्त रिपोर्टों ने ईरान में मोरक्को के दूतावास पर संभावित हमले का भी संकेत दिया। इसके अलावा ईरान और मोरक्को के बीच प्रत्यर्पण संधि ने राजा हसन को एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया। अगर ईरान औपचारिक रूप से शाह के प्रत्यर्पण का अनुरोध करता तो वो कानूनी रूप से उसे सौंपने के लिए बाध्य होता। 15 मार्च 1979 को रिचर्ड पार्कर ने राजा हसन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मोरक्को के राजा ने कहा, शाह से छुटकारा हासिल किया जाना चाहिए। इसके फौरन बाद पार्कर ने शाह को सूचित किया कि वॉशिंगटन एक वैकल्पिक गंतव्य की तलाश कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका, पैराग्वे, मेक्सिको या अर्जेंटीना। दक्षिण अफ्रीका का नाम सुनते ही शाह को अपने पिता के मॉरिशस निर्वासन की याद आ गई और उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। वर्षों पहले अंग्रेज़ों ने रजा शाह को ब्रिटिश आधिपत्य वाले मॉरिशस में निर्वासित कर दिया था। फराह दीबा ने भी पैराग्वे का विरोध किया था। 23 मार्च 1979 को अशरफ पहलवी ने न्यूयॉर्क में रॉकफेलर से मुलाकात की और उनसे कार्टर का मन बदलने या कोई नया गंतव्य खोजने का अनुरोध किया। रॉकफेलर ने लिखा कि मिस्र को छोड़कर यूरोप या मध्य पूर्व का कोई भी देश शाह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हमने अपने प्रयासों को पश्चिमी गोलार्ध पर केंद्रित कर दिया। अंततः किसिंजर ने बहामास के अधिकारियों को शाह को स्थायी रूप से वीज़ा देने के लिए राज़ी कर लिया। 30 मार्च 1979 को मोहम्मद रजा और फराह पहलवी मोरक्को छोड़कर बहामास की राजधानी नसाओ पहुंचे। मिस्र और मोरक्को के विपरीत बहामास में शाह का आधिकारिक स्वागत नहीं किया गया। स्थानीय अधिकारियों ने कड़ी शर्तें लगा दी थीं। शाह को अपने द्वीपीय निवास से बाहर निकलने प्रेस को साक्षात्कार देने या राजनीतिक हस्तियों से मिलने की अनुमति नहीं थी। इन प्रतिबंधों ने इसे एक तरह की नज़रबंदी में बदल दिया। मोहम्मद रजा पहलवी को बहामास के पैराडाइज द्वीप पर एक बंगले में ठहराया गया। उसके बाद अमेरिका में उनके समर्थकों ने प्रोजेक्ट अल्फा के नाम से एक विशेष अभियान शुरू किया। इस अभियान का मकसद कार्टर प्रशासन पर शाहीन के नाम से मशहूर शाह को अमेरिका में प्रवेश की इजाज़त देने के लिए दबाव डालना था। प्रोजेक्ट अल्फा के तहत सबसे पहला कदम 7 अप्रैल 1979 को किसिंजर ने उठाया। ब्रेजिंस्की के साथ एक बातचीत में उन्होंने शाह के साथ कार्टर प्रशासन के व्यवहार की कड़ी आलोचना की। अगले कुछ महीनों के दौरान हॉक्स और डॉब्स और कार्टर प्रशासन के बीच फ़ोन कॉल्स, पत्रों और परामर्श का सिलसिला जारी रहा। शाह समर्थक लॉबी के प्रयास सिर्फ राजनेताओं तक ही सीमित नहीं थे, उन्होंने वैज्ञानिक और शैक्षणिक समुदाय को भी प्रभावित करने की कोशिश की। किसिंजर ने अमेरिका के पूर्व सहयोगियों का समर्थन करने की ज़रूरत पर शैक्षणिक हलकों में व्याख्यान दिए। प्रोफेसर और मध्य पूर्व विशेषज्ञ जॉर्ज लेनकुजोव्स्की को मोहम्मद रजा पहलवी के बचाव में एक किताब लिखने के लिए $40,000 दिए गए, हालांकि वो पुस्तक कभी प्रकाशित न हुई। प्रोजेक्ट अल्फा खर्चीला होने के बावजूद शाह का भय बदलने में विफल रहा। मोहम्मद रजा पहलवी शरण की तलाश में एक देश से दूसरे देश भटकते रहे। कुछ महीनों बाद शाह को अमेरिका में प्रवेश का बहाना मिल गया। तो दोस्तों, इसी के साथ ये पॉडकास्ट समाप्त होता है। और पॉडकास्ट सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए iranradio.ir/hi।